मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज बुधवार है और बुधवार को मैं अब आप सबसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के तरीके पर बात करता हूं और जिस विषय को लेकर हम अभी चल रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, उसी के आगे मैं बात करने जा रहा हूं। पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे कहा था कि पढ़ाई की जो शुरुआत होती है, उसका जो प्रस्थान बिंदु होता है, उसकी जो गंगोत्री होती है, गोमुख कह लीजिए जो होती है, वो है उत्साह और जिज्ञासा। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के दौरान बीच बीच में जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि अच्छा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हो सकता है, ये जिज्ञासा। क्योंकि जो जिज्ञासा है, आप यूं कह लीजिए कि अगर आप रेगिस्तान का सफर कर रहे हैं तो जो जिज्ञासा है वो बीच बीच में आप पानी के बूंदों का काम करेगी, जैसे कि फुहार पड़ रही हो, छिड़काव हो रहा हो, तो आप थकेंगे नहीं, आप उबेंगे नहीं, आपकी जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी और आप टटके रहेंगे, बिल्कुल ताजे बने रहेंगे। जिज्ञासा इसका काम करती है। और सही मायने में जो अध्ययन हम करते हैं उसका पर्पज ही होता है हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना। जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है तो हम उसके समाधान ढूंढते हैं, और जब समाधान ढूंढते हैं तो उसमें हमारी फिर सोच विकसित होती है। क्योंकि कुछ समाधान तो ठीक है, हम दूसरों से पूछ लेंगे, किताबों में ढूंढ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी आदत पड़ जाती है कि हम खुद भी तो समाधान ढूंढें, और जब हम समाधान ढूंढते हैं तो हमें विचार करना पड़ता है। और यही सही मायने में शिक्षा का उद्देश्य भी है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस अध्ययन की बात कर रहे हैं, उसका संबंध चूंकि सिविल सर्वेंट बनने से है, तो हम मान करके चलते हैं कि चलिए थोड़ा सा उससे अलग है, एकदम अलग तो नहीं है लेकिन चलिए थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों, अब मैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, और वह बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ऊपर से देखने पर बहुत सामान्य सा लगता है, और वह है क्या क्या पढ़ें। मैंने कहा था ना कि बहुत सामान्य सा लगता है, बहुत उथला सा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही हो, कोई बड़ी बात बताई जा रही हो, तो आपकी रुचि भी नहीं आएगी इसको सुनने में, क्या क्या पढ़ें। अरे इसमें क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पढ़ लेंगे, क्योंकि हम अभी तक ऐसा ही करते आए हैं, और गलत भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत हो जाती है, क्या क्या पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच पूछे तो इसकी चुनौती वहां से उठकर खड़ी होती है जब हम सिलेबस देखते हैं। क्योंकि जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें उतना विस्तार नहीं है, सिलेबस बहुत डिटेल में बताया हुआ नहीं है, वहां सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया, संकेत के तौर पर कह दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, उसके सिलेबस को छोड़ दूं, तो बाकी के आप सिलेबस देखिए, आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया। अगर अर्थशास्त्र के बारे में कह दिया गया, अर्थव्यवस्था, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, तो आप पाते हैं कि वहाँ सिलेबस में तो अर्थव्यवस्था है लेकिन यहाँ तो अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत भी पूछे गए हैं, ये भी है, फलाना है, फलाना है, तो ये अर्थव्यवस्था में क्या ये सब बातें आती हैं। अब आप देखिए कि एक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, बस खत्म हो गई बात। अब भारत का भूगोल पढ़िए पूरा, विश्व का भूगोल पढ़िए पूरा, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किस किताब से पढ़ेंगे, उस पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। तो खासकर सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो है ही कुछ इस तरीके का कि आपको इसके लिए बहुत विचार पूर्वक तरीके से ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या क्या पढ़ें। और केवल सिलेबस ये चुनौती खड़ी नहीं करता दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उसका पहला वाक्य होता है कि अरे भैया उसमें तो खूब पढ़ना पड़ता है, इतनी सारी किताबें पढ़ो, वो पढ़ो, उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब है कि कुछ भी पढ़ा जा सकता है, और फिर आप कुछ भी पढ़ने लगते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहरों से कोचिंग कर रहे होंगे, अभी तो सब क्लासेस उस तरह से बंद हो चुकी हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा बाजार है। मैं कोचिंग के सेंस में बाजार नहीं कह रहा, मैं किताबों के सेंस में बाजार कह रहा हूं। जब आप आईएएस की तैयारी के लिए किताबें खरीदने जाते हैं, तो जब आप दुकान के सामने खड़े होते हैं तो वहां का जो दृश्य होता है आपको भ्रमित करके पागल कर देने के लिए पर्याप्त होता है। एक एक विषय पर सैकड़ों किताबें, अलग अलग तरीके के नोट्स। जब आप पत्रिका का चयन करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया भर की पत्रिकाएं और कुछ इस तरह का मटेरियल जो आपको सिविल सर्विस की विशेष तैयारी कराने का आश्वासन देते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए या जो आपके गाइड हैं उनसे पूछेंगे क्या पढ़ना चाहिए, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और ये जितना भी कुछ कहा जा रहा है यदि आप उन सबको मिला लीजिए तो पता लगेगा कि उस दुकान में जो कुछ भी है वो सब आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? और चलिए अगर संभव भी है तो मेरा तो सबसे बड़ा पहला प्रश्न यही है कि क्या यह जरूरी है? और अगर मैं ये सब पढ़ भी लेता हूं तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकूंगा? जब आप इन विषयों पर सोचेंगे कि क्या जरूरी है, क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या पढ़ सकने के बाद मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं, तो हर जगह आपको उत्तर मिलेगा नहीं, आप इतना नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता, जरूरी तो है ही नहीं। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो पक्का है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्री में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप टिक मार्क लगाते हैं, मेंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतम 250 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। तो फिर इतना सारा जो पूरा का पूरा जो बवाल मचा हुआ है, ये पढ़िए, सोच करके देखिए, आप खुद इस पर विचार कीजिए, मेरी बातों पर सीधे सीधे मत जाइए, क्या जरूरी है? देखिए ये भी कुछ इस तरीके का ही है कि जैसे आपको कहीं पहुंचना है, आपकी एक मंजिल है, अब उस मंजिल पर जाने के लिए अगर आपके पास रास्ता सही नहीं है तो मान करके चलिए कि केवल सफर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। सफर मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा कहने का मतलब है कि आप चल तो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, सुबह से शाम तक चल रहे हैं, जितना चलना चाहिए उतना चल रहे हैं, जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से भी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है तो सीधी सी बात है कि आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं जहां आप को पहुंचना चाहिए या जहां आप पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो मैंने कहा क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप एक तरीके से रास्ता कह लीजिए कि इस रास्ते पर चल करके ही, यानी कि किन किन चीजों को पढ़कर आप सही मायने में सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की उन्हें फुलफिल कर सकेंगे, ये जब तक सही नहीं होगा तब तक आप बताइए कि कैसे पहुंच सकते हैं। मैं कोई बहुत इलॉजिकल बात अगर कह रहा हूं तो आप मेरी बात के जवाब में आप बिल्कुल अपनी बात लिख करके भेजें। देखिए जो यूपीएससी है वो बकायदे आपकी क्षमताओं को जानती है, आपकी आपकी उम्र कितनी है, आप कितने मेच्योर हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आपकी जो समझ है उसका स्तर क्या है, ये सब बातें यूपीएससी के दिमाग में हैं और उन्हें ही ध्यान में रख करके वो बकायदे आपका सिलेबस निर्धारित करती है और साथ ही साथ आपके एग्जामिनर्स भी वो उसी लेवल पर लेकर के आती है और क्वेश्चन पेपर भी वो उसी तरह के बनाती है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी एज 21 ईयर्स की है और आप ग्रेजुएशन हैं तो ग्रेजुएशन की डेफिनेशन अब आप क्या लेकर के चलते हैं वो आपके ऊपर है, अदरवाइज शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, पूरी वैश्विक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है और बहुत बड़ी बात है। ग्रेजुएट होना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि अपना पढ़े और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो स्नातक है, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों यूपीएससी आपसे कभी इस बात की अपेक्षा नहीं करती है कि आप जो भी किताबें किसी एक पर्टिकुलर विषय पर हैं आप सब पढ़ जाइए, सब रट जाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो कोई इंटेलिजेंसिया टेस्ट नहीं ले रही है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, उसका टेस्ट नहीं लेती। और बकायदे आप सिलेबस पढ़ करके देखें, यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन है, बहुत क्लियर कट उसमें दिया हुआ है कि मेमोरी पावर का परीक्षण करना हमारा उद्देश्य नहीं है और ना हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, कितनी सूचनाएं आपके पास है, उससे हम क्या करेंगे। इसके बावजूद वो एग्जाम तो लेगी क्योंकि उसे कोई ना कोई आधार तो चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसके बारे में मैं जो आपको एक लाइन बताना चाहूंगा वो कुल मिलाकर के यह कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ी सी चीजें सेलेक्ट कीजिए, जो अच्छी चीजें आपको लगती हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए और जब मैं कह रहा हूं पढ़िए तो फिर इस तरीके से पढ़िए कि वह आपकी समझ में आ जाए, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि क्या क्या पढ़ें। जब आपने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर यही होगा कि इसे कैसे पढ़ें। तो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए मटेरियल के रूप में, चाहे वो बुक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मैगजीन्स के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी आप पढ़ना चाहते हैं, या सबका मिला जुला ही स्वरूप क्यों ना हो, वो बहुत ही सेलेक्टेड होना चाहिए। आप भयभीत मत होइए, आशंकित मत रहिए। मैंने देखा है कि जनरली जो माहौल होता है वो आपको भ्रमित कर देता है, आशंकित कर देता है, भयभीत भी कर देता है, डरा देता है। दो स्टूडेंट या स्टूडेंट का एक समूह है, वो आपस में बात कर रहा है, तुमने ये किताब पढ़ी क्या? कि नहीं, मैंने तो ये किताब नहीं पढ़ी। अरे तुमने ये किताब नहीं पढ़ी, तब फिर तुम क्या तैयारी कर रहे हो भैया, ये तो बहुत जरूरी है। अब आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मैंने सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना था। आप भागे भागे फिर जाते हैं, वो किताब लेकर के आते हैं, जो पहले पढ़ रखा था आपने उसे छोड़ दिया, अभी आपने नई उठा ली, और जब तक ये पूरा होता है तब तक फिर से कोई नया सजेशन आ जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। किताबें लिखने वाले तो किताब लिखेंगे ही, वो अपने अपने एंगल से लिख रहे हैं, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार लिख रहे हैं, लेकिन ये किसने कह दिया कि अनिवार्य ही है? हाँ, किसी सब्जेक्ट पर कोई एक किताब पढ़ना डेफिनेटली अनिवार्य है, क्योंकि बिना किताब के आप करेंगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर आप बिल्कुल किताबों के ढेर सारे जमाव कर लें कि साहब ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है। याद रखिए कि इससे आपका दिमाग भ्रमित होगा, और जो भ्रमित मस्तिष्क है वो न तो प्री में आपको सफलता दिला पाएगा, और मेंस में तो सफलता दिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कुलबुलाती रहेंगी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आंसर राइटिंग कर ही नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे तो बस इतना इतना पढ़ना है, यह पढ़ना है। आपके पास इसकी एक ठोस लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। हाँ, समय समय आने पर आप उसको रिवाइज करते रहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में प्लीज़ न पढ़ें। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस अब इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: चंदन त्रिपाठी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद शादाब, आरती सिंह, मयंक द्विवेदी, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, प्रणव राज, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और वेदानंद जमशेदपुर झारखंड से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।